हम अक्सर कोई चीज जैसे सेल कर रहे होते हैं तो उसमें डिस्काउंट की एक लिमिट होनी चाहिए। अक्सर होता ही है कि कस्टमर जो है वो बहुत देर लगा देता है हमारे पास सिर्फ इस चक्कर में कि हम जो है वो उसको इतना बता दें कि हमने रखा कितना है। और इसमें जो है वो बड़े अक्सर अक्सर ऐसा हो जाता है कि हमें झूठ बोलना पड़ जाता है कि हमने जो है वो 500 रुपये रखे हैं या 200 रुपये रखे हैं या 100 रुपये रखे हैं, जो कि हमें पता होता है, पता होने के बावजूद बोलना पड़ता है झूठ उससे जान छुड़ाने के लिए कि यार वो बस या तो टिकट ले या ना ले, बस वो चला जाए इधर से। क्योंकि वो इतनी देर लगा देते हैं सिर्फ इस चक्कर में कि भाई वो हमें ये पता चल जाए कि अगला रख कितना रहा है और इतना क्यों रख रहा है। तो इसकी थोड़ा सा या तो हमें वजाहत दे दें कि हमें किस तरीके से फिर बात करनी चाहिए या हम किस हद तक उसको अपने झूठ को कवर कर सकते हैं, झूठ ना बोलना पड़े, मतलब कितना कवर कर सकते हैं, या फिर आम पब्लिक को आप ऐसा कोई मैसेज दें कि वो जब किसी से डीलिंग करने के लिए जाएं तो उसको एक लिमिट तक तंग करें, क्योंकि ये अक्सर हम लोग तंग और परेशान हो जाते हैं।
सवाल माशाल्लाह बड़ा दिलचस्प है। शरी मसला ये कि जो भी काम करें शरी रहनुमाई से हम करें। अब आपके कारोबार में पता नहीं कितने शोबे होंगे और कितना हमला होगा, एक शोबा उसके सुपुर्द होगा, एक शोबा इसके सुपुर्द होगा, तो कोई शोबा ऐसा भी तो करो अल्लाह के बंदो कि जो एक की जिम्मेदारी हो कि ये इसके खाते में ये शोबा है कि ये उलमा से पूछ पूछ कर हमको मसले बताता रहेगा। शरीर शोभा भी तो होना चाहिए ना, शरीर तहकीक का, तफ्तीश का, इसका शोभा कोई नहीं है। अच्छा अब यह कि हमने आपको या दावत इस्लामी ने याद किया तो चलो यह आपकी मेहरबानी है कि आपने हमें खिदमत का मौका दिया, लेकिन सच्ची बात यह कि यह जिम्मेदारी हमारी नहीं है कि हम आपको समझाएं। हर मुसलमान की अपनी जिम्मेदारी है कि जो वो काम करता, जैसे हदीस पाक है तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिमिन, हर मुसलमान पर इल्म हासिल करना फर्ज है। फतावा रजविया शरीफ में मेरे आका आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान अलैह रहमतुर रहमान ने इस हदीस के तहत काफी वजाहत फरमाई है, जिसका खुलासा ये कि हर एक को हस्ब हाल मसाइल सीखना फर्ज आयन है। जैसे जो नौकरी करना चाहता है तो उसके लिए नौकरी के मसाइल सीखना फर्ज है, जो नौकर रखना चाहता है उसको नौकर रखने के मसाइल सीखना फर्ज है। वरना यह कि वो जैसे आजकल बाज जगह होता है यार आ जाओ देख लेंगे, आ जाओ देख लेंगे, दे देंगे यार, तो वो इस तरह नौकर रखना ये नाजायज और गुनाह है। और इसी तरह जैसे मजदूरी में जिसको मजदूरी करनी है उसको मजदूरी के मसाइल सीखना फर्ज है, जिसको मजदूरी करवानी है उसको मजदूरी करवाने के मसाइल सीखना फर्ज है। वरना यही मतलब आजकल तो होता है ना कि सेठ अपने इंसाफ से दे देना, मजदूर आकर सामान रखता है फिर अड़ी करता है, आपका इंसाफ 10 रुपए का होता है, उसका इंसाफ 90 रुपए का होता है, फिर 50 रुपए डन होता है, वो लड़ाई हुई। तो शरीयत में कहीं भी झोल नहीं है। इस्लाम जो है अमन का पैगाम देता है और वो लड़ाई आपस की, मुसलमानों की आपस की खाना जंगी की हौसला शिक नहीं करता है। तो जहां भी लड़ाई का शुबा हो ना, ऐसा कोई भी शरी मसला नहीं है, ये हमारी कोताहियां हमारी मालूमात की कमी की वजह से ऐसा होता है कि हम मजहूल बात करते हैं, यानी कि अधूरी बात करते हैं, वो क्लियर कट बात नहीं करते। हमेशा बात क्लियर कट हो और जहां लड़ाई का अंदेशा वहां आदमी लिखत पढ़त कर ले, जैसे कि वो आप उसूल बना ले कि ये हमारे उसूल होंगे और जाहिर को इस पर दिखा दें, पढ़ा दें, इसकी साइन भी ले लें, कल आकर आपसे लड़ाई करें तो आप इसको आईना दिखा सकें कि भाई साइन करके गए हो, तो झगड़ा आसानी से निपट जाएगा। तो बहरहाल ये कि हर एक को, जैसे तो अब कारवान वाले किसी को कारवान चलाना है तो उस पर फर्ज है कि वो कारवान के जरिए वो शरण कैसे, मतलब गुनाहों से बच सकेगा, हलाल रोजी कमा सकेगा, ये इस पर फर्ज था सीखना, फर्ज है आइन, नहीं सीखा तो गुनाहगार है वैसे ही। तो इसलिए वो हम लोगों का या दावत इस्लामी का या दारुल इफ्ता का या उलमाए सुन्नत پر واجب نہیں ہے کہ وہ ایک ایک کو پکڑ کے مسئلہ بتائے، بلکہ فرض آپ لوگوں پر ہے، جن جن پر جو جو حسب حال فرض ہیں وہ سیکھنا فرض ہے. نماز جس پر فرض ہوئی اس پر فرض ہے کہ وہ نماز کے مسائل جانتا ہو کہ کیسے نماز درست ہوتی ہے، کیسے فاسد ہوتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، تو ضروری مسائل جو ہوں وہ سیکھنا فرض ہے. تو ایک بات تو یہ کہ پھر یہ ایک بڑی دلچسپ اس سوال میں وہ پہلو ہے کہ یا آپ ان کو سمجھائیں کہ ہم کو ایک حد تک تنگ کریں، تو لمٹ آپ طے کریں کہ کتنی لمٹ میں آپ کو تنگ کرنے کی اجازت ہے گاہک کو. تو ظاہر ہے کہ اس کی لمٹ آپ ہی طے کریں گے. میں تو یہی عرض کروں گا کہ آپ مطلب یہ نہیں کہ دو ٹوک بات کریں، آٹیاں نہ ماریں، انشاءاللہ گاہک کہیں نہیں جاتا. جو تاجر، جو دکاندار دیانتدار ہوتا ہے، ہونیسٹ ہوتا ہے اور صحیح سودا بیچتا ہے، صحیح دام رکھتا ہے واجبی سا، آپ دیکھیں گے اس کے گراہک زیادہ ہوتے ہیں، اس کی دکان چلتی ہے. شروع میں ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، اس کو یوں ہوتا ہے کہ میرے گاہک چلے گئے، آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالی اس کی محبت گاہکوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے اور گاہک آنکھیں بند کر کے اس سے سودا خریدتا ہے. اب ہم ہاٹیاں ہمارے چکر بازیاں کریں اور پھر بولیں گے یہ تنگ کرتے ہیں، کیوں تنگ کریں گے، پاگل ہو گئے تنگ کریں گے. اب یہ کہ لاکھوں حاجیوں کو، لاکھوں آپ کے گاہکوں کو میں سمجھانے کہاں نکلوں گا. آپ جو 150 ہیں وہ اگر انشاءاللہ بالکل یعنی کہ شرعی اصول معلوم کر کے، جنہیں معلوم نہیں ہے یا جو مطلب غلط کر رہا ہے، میں اس کو کہہ رہا ہوں، ذرا 100% ہی تو غلط ہوں، یہ تو ممکن نہیں ہے کہ سارے کے سارے غلط ہوں. جو جو غلط کرتا ہے وہ درست ہو جائے، ان کا درست ہونا آسان ہے، اتنی مخلوق کا درست ہونا یہ مشکل ہے، نہ یہ سارے ہماری بات سنتے ہیں. ظاہر ہے کہ ہر ایک تو مدنی چینل پر اس تک ہونا ضروری ہے. جو بیچارہ یہ سن بھی رہا ہوگا تو ٹھک کر کے بجلی چلی جائے گی تو گیا کام سے، یا وہ ایرر آ جائیں گے، یا نو سگنل کا بورڈ لگ جائے گا اور مسئلہ ادھورا ہو جائے گا. تو اس لیے باب المدینہ والوں کو تو چاہیے کہ وہ مدنی چینل کے بجائے وہ براہ راست مدنی مرکز میں آ جائے کریں. مدنی مذاکرہ الحمدللہ ہو ہی رہا ہے نا، جمعہ رات کو اجتماع ہو رہا ہے، تو آپ خود تشریف لائیں تو انشاءاللہ پھر یہ کہ آپ کو زیادہ سمجھ آ جائے گی. پھر عاشقان رسول کا قرب ملے گا، صالحین کی برکتیں یہاں ملیں گی آپ کو کہ آپ کے اطراف میں، ظاہر ہے کہ سب نیک صورت عیسائی بھائی بیٹھے ہیں تو ہمارا حسن ظن ہے کہ یہ نیک ہیں. ہم کسی کو تھوڑی کوئی اپنے اٹکل سے بولیں کہ بھائی یہ گناہ گار ہے تو وہ فاسق ہے تو وہ فاجر ہے، نہیں، معاذ اللہ. جس کی ظاہری صورت اچھی ہے ہم اس کو اچھا ہی بولیں گے کہ اچھا ہے، الحمدللہ، اللہ ہم سب کو اچھا کر دے، ہمارا اندر بھی اچھا ہو جائے، ظاہر اچھا ہو گیا، باطن بھی اللہ اچھا کر دے ہمارا. تو ہمیں مسلمان کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے. تو یہاں ماشاء اللہ ایک بہت پیارا مدنی ماحول بنا ہوا ہے، تو آپ یہاں آ جائیا کریں. گھر میں دیکھیں گے تو کبھی بچہ بھاگ کے لپٹ جائے گا، تو کبھی آپ کو پانی کی پیاس لگے گی تو کوئی چائے آ جائے گی، تو گھر والے کوئی بات لے کر بیٹھ جائیں گے کہ وہ اس کا کیا ہوا آپ لائے نہیں. تو اس طرح مدنی چینل پر یکسوئی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، یہ غالباً سبھی سمجھتے ہوں گے میری بات کو. اس کے علاوہ تقریباً 200 زائد ممالک میں ویسے ہی مدنی چینل وہ سیٹلائٹ کے ذریعے یا نیٹ کے ذریعے پہنچا ہوا ہے، الحمدللہ. تو یہ جگہ جگہ الحمدللہ اس سے مسلمان استفادہ کر رہے ہوں گے اور غیر مسلم بھی الحمدللہ اس کو دیکھتے ہیں، اور آئے دن ہمیں ان کے اسلام قبول کرنے کی خبریں ملتی ہی رہتی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. تو یہ ہمارا برقی مبلغ ہے، الیکٹرانک مبلغ، جو گھر گھر جا کر الحمدللہ نیکی کی دعوت دے رہا ہے اور یا رسول اللہ کے ڈنکے بجا رہا ہے، الحمدللہ. دعا بھی کرتے رہیں کہ یہ ہمارا مدنی چینل، نہیں آپ کا مدنی چینل، ہم سب کا مدنی چینل سلامت رہے، اس کو نظر بد نہ لگے. تو اچھا، ہمارے ساحل نے یہ بھی اعتراف کیا کہ ہم کو وہ جھوٹ بولنا پڑ جاتا ہے، تو یہ ایک مسئلہ ہم سب کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ گناہ تو ہے، گناہ ہے نا، یہ تو یقیناً گناہ ہے، جو گناہ ہے. اب گناہ کا اظہار کرنا کہ میں گناہ کرتا ہوں یا میں نے فلاں گناہ کیا، یہ دوسرا گناہ ہے. تو یہ گناہ کا اظہار گناہ ہے، यानी किसी से गुनाह हो गया तो उसको चाहिए कि वो दूसरे को ना बताए कि मुझसे ये गुनाह हो गया या मैं फुला गुनाह करता हूं, इसको बेबाकी बोलते हैं। और बेबाकी में ईमान का बड़ा खतरा है, सलबे ईमान का खौफ है इसमें, बेबाकी से गुनाह करने में। तो कभी भी ना बताया करें, तो जितना झूठ बोला उससे भी आप तौबा करें। और अब लाखों को आपने बता भी दिया कि मैं झूठ बोलता हूं, या कम से कम जो जानते हैं आपको उन पर तो ये शो पड़ गया कि ये तो झूठ बोलता है, तो खुद बोलता है। मदनी चैनल पर इन्होंने ऐलान किया कि मैं झूठ बोलता हूं। तो मैं ये प्यारे साहब भाई मैं आपको समझा रहा हूं, हमारा काम है नेकी की दावत देना। और जाहिर है कि जब बंदा बीमार होता है तो उसको जब दवा दी जाती है तो बस जायका होती है, इंजेक्शन लगता है तो ऊ करके आवाज निकलती है, चुभन होती है। जब ऑपरेशन होता है तकलीफ बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए मैं माजरत भी चाहता हूं कि आपको अगर तकलीफ हो रही है तो ये भी अखलाकी तौर पर माजरत चाह रहा हूं, वरना मुझ पर कोई तोबा या माफी मांगना वाजिब नहीं। मैं तो शरई मसला अर्ज कर रहा हूं कि इस तरह ना किया करें। और झूठ का इजहार इसकी भी तोबा, और आइंदा झूठ ना बोलने का एहद भी जरूरी है। ये ग्राहक बोलता है कि कितना रखा है, इसमें उमूमन ये होता है कि जब बोलने वाला बहुत ज्यादा बोलता होता है, चर्ब जबान होता है, बहुत ज्यादा बोलता है, तो उसका ऑटोमेटिक रोब चला जाता है। जैसे बुजुर्गों ने लिखा है कि खामोशी बगैर सल्तनत की हैबत है। अगर आप टू द पॉइंट बात करेंगे, हंसकर बात करें, मुस्कुरा कर बात करें, उसको बिल्कुल यानी गले लगा कर बात करें, यह नहीं मना करता मैं, मिलन सारी भरपूर दिखाएं, लेकिन आप टू द पॉइंट बात करेंगे ना तो अगले की जबान कम खुलेगी। और हम अगर ये बड़बड़ 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 करके अपने कारनामे तो सुनाते रहेंगे ना, तो वो अगले की जबान एकदम बेलगाम हो जाएगी और फिर वो बिल्कुल काकड़े में उंगली डाल के हमसे सब कुछ निकलवाएगा। खाली इस टिकट पर नफा नहीं पूछेगा, वो ये भी पूछेगा कि तुमको महीने की आमदनी कितनी है, फिर आपने बताया तो फिर मरे, फिर आप पूरा बताओगे नहीं, फिर बोलोगे दूसरा झूठ, सालाना कितनी, आपका कोटा कितना होता है, ईमानदारी से बताना कि एक हाजी पर कितना मिलता है, अच्छा एक उम्रे वाले पर कितना मिलता है। यार किसी गरीब पर रहम भी क्या करो, रियायत करते हो कि नहीं किसी पर, के सबको काटते हो। फिर इस तरह की वो बातें कर करके आपका दिमाग खाता रहेगा, उंगली मत दिया करो, आप उंगली देते हो या हाथ पकड़ लेते, फिर वो नाक में दम और दम में नाक कर देते। तो बहरहाल ये तय है कि अगर आप झूठ बोलेंगे इसमें तो ये गुनाह होगा कि मुझे इतना नहीं। और जैसे बोला कि हम बोलते हैं 500 रुपये मिलता है, जबकि मिला 1500 होता होगा, तो चाहे 1500 मिले या 2500 मिले, आप उसको ना बताएं, आप इनको मोहब्बत से प्यार से कि देखो भाई अगर मैं बोलूं कि मुझे 200 मिलते हैं तो आप मुतमइन तो हो जाओगे, लेकिन मेरा जमीर मुतमइन नहीं है 200 बोलने में और 500 बोलने में, तो यार आप नहीं पूछो, टिकट इतने का है। और आप किसी को भी पूछोगे ना तो वो हो सकता है कि वो बताएगा, तो ये इम्कान है कि शायद झूठ भी बोल दे। आजकल आमतौर पर लोग झूठ बोल देते हैं, लेकिन आप किसी की निशानदेही मत करना कि फुला झूठ बोलता है, वरना फिर गीबत की सूरत पैदा होगी, किसी का ऐप खोलने की सूरत पैदा होगी, बगैर जरूरत के ना बताया जाए कि ये झूठ बोलता है। तो आप इसको ये बोलें कि यार मुझे आप मजबूर नहीं करो कि मैं खामा का फिर झूठ बोल दूंगा, वो गुनाहगार हो जाऊंगा, तो मैं झूठ बोलना नहीं चाहता और मैंने तौबा कर ली है, तो ये इतने का टिकट। आप इस तरह मोहब्बत से समझाओगे तो आखिर यह कि सारे हैवान नहीं है इंसान, मोहब्बत प्यार। अगर आप बिल्ली को प्यार दोगे ना तो बिल्ली भी कमान की तरह टेढ़ी होकर आपके कदमों से रगड़ खाएगी। तो एक हैवान भी यार मानुस हो जाता है प्यार से, तो ये तो इंसान है। चलो ठीक है, आपके झूठ ना बोलने की वजह से ग्राहक चला गया तो आप इसको जाने दो, बल्कि इसको छोड़ाओ इसके घर तक के यार तू जा यार, मैं मुझे जहन्नम की तरफ घसीट मत यार, मैं झूठ बोलूंगा जहन्नम में जा पड़ूंगा तो फिर क्या बनेगा। यार झूठ तो हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है, तो इससे हम सबको बचना चाहिए। अपनी हलाल रोजी करो, सुथरी रोजी करो, खुद भी सुथरी खाएं, अपने बच्चों को भी सुथरी खिलाएं। आपका जितना पेट है इतना आप खाएंगे, जितना तन है इतना आप पहनेंगे, बाकी सब मर के छोड़ जाओगे। जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा, जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा, دو گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا، دو گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم و رسول و اعلم عز و جل، و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔